ओके उसके बाद जो है ना अभी मैं इसको दोबारा से जो ना चैप्टर की रिकॉर्डिंग जो है ना स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। बस टॉपिक वाइज अभी आगे करते हैं। तो शुरू में ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ अ पाइलो सेबिशियस स्ट्रक्चर। एज द नेम शोज कि पाइलो का मतलब है तो हेयर और सेबिशियस का मतलब होता है सेबिशियस ग्लैंड। तो इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ द स्किन और दैट पार्ट ऑफ द स्किन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड एडजेसेंट सेबिशियस ग्लैंड एंड इन सम साइड्स इसके साथ एपोक्राइन ग्लैंड भी होता है और स्मॉल स्ट्रिप ऑफ स्मूथ मसल विच इज़ नोन एज द इरेक्टर पिलाई मसल विच इज़ इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ द सिक्रीशंस फ्रॉम दीज ग्लैंड। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ड्रग्स को कंप्रेस करते हैं और फिर वहाँ से इसके सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई, हेयर फॉलिकल आ गया, सेबिशियस ग्लैंड एंड समटाइम्स देर मे बी एन एपोक्राइन ग्लैंड एज वेल एंड देर इज़ अ स्ट्रिप ऑफ मसल द इरेक्टर पिलाई मसल। उसके बाद जो है ना पाइलो सेबिशियस अपेरेटस के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर डिफरेंट है। सच एज द पाइलर कंपोनेंट ऑफ द पाइलो सेबिशियस अपेरेटस इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन द स्कैल्प एंड द सेबिशियस एलिमेंट इज मोर कॉमनली प्रेजेंट ऑन द फेस, चेस्ट एंड अपर बैक। इसी वजह से जो है इनकी जो भी ट्यूमर्स या जो भी डिजीज़ नज़र आती है ना वो इन्हीं बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हेयर फॉलिकल वाले ट्यूमर्स हैं ना तो वो हमें स्कैल्प पे और मेल्स में बियर्ड एरिया वगैरह पे यानी फेस पे नज़र आएंगे, जबकि सेबिशियस ग्लैंड्स की फॉर एग्ज़ाम्पल एक्नी एसोसिएटेड होती है ना तो कहाँ पे आती है, फेस, नेक, अपर बैक और ट्रंक एरिया पे आती है। तो ये इसकी एनाटोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम बात करते हैं एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पाम्स एंड सोल्स। इसी वजह से जो ऐसे एक्राइन पुरोमा आता है पाम्स एंड सोल्स पे प्रीडोमिनेंटली आता है, ठीक है। तो फिर डीपली सिचुएटेड इसमें जो इसके सिक्रीटरी डक्ट्स होते हैं ना दे आर दीज ग्लैंड्स आर डीपली सिचुएटेड सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ये जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं सच एज द सबक्यूटेनियस टिश्यू, लेकिन इनके जो डक्ट्स होते हैं ना फिर ये पास होते हैं टू द सुपरफिशियल स्किन and it passes through the dermis and the epidermis and to lead to and produces an opening at the surface of the skin. जो इसकी secretions आती है on the surface of the skin. फिर जो excretory ductal portion है ना ecrine और apocrine glands के, they are very similar to each other morphologically and histologically as well. अगर हम cut section देखते हैं इसके skin के अंदर और उसमें ducts नज़र आते हैं ना तो we cannot differentiate between the two. उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें हिस्टोकेमिकल और इम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टेन्स यूज़ करने पड़ेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डक्ट्स ऑफ द एक्राइन ग्लैंड एंड द एपोक्राइन ग्लैंड। और इसके जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें भी डक्टल डिफरेंशिएशन होती है तो उसमें भी डिफरेंशिएट करने के लिए यही स्टेन्स हमें चाहिए होंगे। और उसके अलावा साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस के साथ जो है ना फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन है। एट द लास्ट इसमें ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि अपेंडेज ट्यूमर्स जितने भी होते हैं ना वो सारे रेयर ट्यूमर्स होते हैं और इनमें जो क्लिनिकल अपीयरेंस होती है ना वो नॉन स्पेसिफिक होती है। तो इवन अभी तक हमने जितने भी एडनेक्सियल ट्यूमर्स देखे हैं ना सब में या तो पैप्यूल आ रहा होता है या प्लाक आ रहा होता है या नोड्यूल आ रहा होता है। तो इनमें जो है ना क्लिनिकली हम कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। येस वी कैन हैव अ रफ आइडिया कि क्या हो सकता है लेकिन फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस द बायोप्सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।